एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने, सच कहूं तो, मुझे वाकई अंदर तक हिला दिया।
हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। रॉबर्ट कोलकर की हिडन वैली रोड, इनसाइड द माइंड ऑफ एन अमेरिकन फैमिली, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक पूरा अनुभव है।
बिल्कुल, एक अमेरिकी परिवार, गेल्विन परिवार, उनकी कहानी है ये।
और कहानी भी कैसी, सोचिए 12 बच्चे और उनमें से 6 को सिज़ोफ्रेनिया। मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में इतना चौंकाने वाला है।
हाँ, है तो। और ये कहानी सिर्फ उस परिवार के, आप कह सकते हैं, दुख और संघर्ष की नहीं है। ये भी दिखाती है कि कैसे उनकी जो निजी त्रासदी थी, उसने अनजाने में ही सही सिज़ोफ्रेनिया जैसी, मतलब इतनी जटिल मानसिक बीमारी पर हमारी समझ को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
बिल्कुल, और इसीलिए ये आज भी इतनी रेलेवेंट है ना? क्योंकि ये सीधे उन मुद्दों पर बात करती हैं जिनसे हम आज भी जूझ रहे हैं। मेंटल हेल्थ, परिवार पर उसका असर, फिर वो विज्ञान की दुनिया और समाज में जो एक चुप्पी है, एक कलंक है।
सही बात है, भारत में भी हम ये चीजें देखते हैं, महसूस करते हैं। तो ये कहानी भले ही अमेरिका की हो, पर कहीं ना कहीं बहुत अपनी सी रखती है।
हाँ, वो जुड़ाव महसूस होता है। तो चलिए फिर इस गहरी और काफी भावनात्मक कहानी के अलग अलग पहलुओं को जरा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ, शुरू करते हैं लेखक से, रॉबर्ट कोलकर। ये नाम शायद कुछ श्रोताओं ने सुना भी हो, ये कोई नए लेखक तो है नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट कोलकर अमेरिका के जाने माने खोजी पत्रकार हैं। उनकी पिछली किताब लॉस्ट गर्ल्स, वो भी काफी चर्चित हुई थी। एक अनसुलझे सीरियल किलिंग केस पर थी वो।
अच्छा।
हाँ, और उसी से ये साबित हो गया था कि कोलकर जो है वो मुश्किल और दुखद कहानियों को बहुत ही संवेदनशीलता और गहरी रिसर्च के साथ बताने में माहिर है।
और उनकी यही खासियत है शायद कि वो जो भारी भरकम साइंटिफिक जानकारी होती है या सामाजिक मुद्दे होते हैं, उनको इंसानी कहानियों के जरिए सामने लाते, मतलब बोरिंग नहीं बनाते।
सही कहा। और हिडन वैली रोड के लिए तो उन्होंने, मतलब गैल्विन परिवार के जो सदस्य जीवित थे, जो डॉक्टर्स थे, रिसर्चर्स थे, उनके साथ न जाने कितने घंटे बिताए, सैकड़ों इंटरव्यू किए। उनका तरीका सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है।
हाँ, वो महसूस होता है पढ़ते हुए।
बिल्कुल, वो एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखते हैं, लेकिन उनमें एक गहरी सहानुभूति है। वो वैज्ञानिक बहस और परिवार के अंदर का जो दर्द है, दोनों को बिना किसी का पक्ष लिए पूरी ईमानदारी और करुणा के साथ पेश करते हैं।
इससे कहानी सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, वो दिल को छूती है। वो हमें उन किरदारों की दुनिया में ले जाते हैं।
हाँ,
तो अब आते हैं किताब पर, हिडन वैली रोड। इसकी कहानी आखिर है क्या? जैसे हमने शुरू में बताया, ये कोलोराडो के गैल्विन परिवार की कहानी है। डॉन और मिमी गैल्विन और उनके 12 बच्चे।
10 बेटे और 2 बेटियां। और बाहर से देखने पर, जैसा आपने कहा, एकदम परफेक्ट अमेरिकन परिवार। पिता एयरफोर्स में ऊंचे पद पर, सफल, माँ घर और बच्चों के लिए पूरी तरह समर्पित। बड़ा खुशहाल दिखने वाला परिवार।
बिल्कुल, 1960 के दशक का वो जो एक अमेरिकन ड्रीम होता है, वो साकार होता वैसा लगता था।
हाँ, लेकिन उस चमकती हुई परत के नीचे एक बहुत ही अंधेरा, एक भयानक सच छिपा हुआ था।
और वो सच था सिज़ोफ्रेनिया। उनके 10 बेटों में से एक एक करके 6 बेटों को ये गंभीर मानसिक बीमारी हो गई।
6 को?
हाँ, 6। और किताब हमें उसी घर के अंदर ले जाती है जहाँ धीरे धीरे डर, भ्रम और कई बार तो हिंसा का माहौल बन गया था। ये पढ़ना वाकई आसान नहीं है। कोलकर ने कुछ भी छिपाया नहीं है, बहुत बेबाकी से लिखा है।
नहीं, बिल्कुल नहीं छुपाया। और साथ ही किताब एक दूसरी कहानी भी साथ साथ बुनती चलती है। वो है सिज़ोफ्रेनिया को समझने की जो वैज्ञानिक यात्रा रही है, उसकी कहानी।
अच्छा, वो पहलू भी?
हाँ, कैसे शुरुआत में डॉक्टरों ने, समाज ने गलती से माओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। वो जो एक थ्योरी थी सिज़ोफ्रेनिक मदर वाली, कितनी गलत थी वो।
हाँ, सुना है उसके बारे में।
और फिर कैसे धीरे धीरे विज्ञान इस तरफ बढ़ा कि नहीं, ये जेनेटिक्स और दिमाग से जुड़ी एक बायोलॉजिकल बीमारी है।
तो ये दो ट्रैक साथ चलते हैं, परिवार की कहानी और विज्ञान की।
बिल्कुल, और ये दोनों कहानियां, परिवार की वो निजी त्रासदी और विज्ञान की वो खोज, एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं।
वो कैसे?
जब वैज्ञानिकों को गैल्विन परिवार के बारे में पता चलता है, उन्हें लगता है कि अरे, एक ही परिवार में इतने सारे केस, ये तो इस बीमारी की जेनेटिक पहेली को सुलझाने में बहुत मददगार हो सकता है।
अच्छा, तो वो परिवार उनके लिए एक तरह से,
हाँ, किताब में शब्द इस्तेमाल हुआ है जेनेटिक गोल्ड माइन, मतलब आनुवंशिक सोने की खान जैसा। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा जटिल और कह सकते हैं नैतिक रूप से सोचने पर मजबूर करती है।
ये सोचना भी अजीब है कि एक परिवार का इतना गहरा दुख दूसरे नजरे से देखो तो विज्ञान के लिए एक मौका बन गया। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं कि ये सब हुआ कैसे, कहानी आगे कैसे बढ़ती है।
हाँ, तो किताब हमें ले जाती है 1960 के दशक में, कोलोराडो स्प्रिंग्स की हिडन वैली रोड, जहाँ गैल्विन परिवार रहता था। सब कुछ एकदम आदर्श लगता है शुरुआत में।
पिता डॉन का सफल एयरफोर्स करियर, माँ मिमी का घर के प्रति समर्पण, बच्चों की लाइन लगी हुई है, घर में अनुशासन है, कैथोलिक विश्वास है, एक परफेक्ट तस्वीर।
बिल्कुल, लेकिन फिर जैसा होता है इस तस्वीर में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगती हैं। सबसे बड़ा बेटा डोनाल्ड, जो बहुत होनहार था, आकर्षक था, उसके बर्ताव में अजीब से बदलाव आने लगते हैं।
क्या होता है?
वो कॉलेज में अच्छा नहीं कर पाता, लोगों से कटने लगता है, अकेला रहने लगता है। अब शुरू में तो माँ बाप सोचते हैं कि भाई टीनेज है, जवानी का जोश है, या शायद पढ़ाई का तनाव है, नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं।
स्वाभाविक है।
हाँ, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। फिर डोनाल्ड का पहला साइकोटिक ब्रेक होता है, मतलब जब इंसान का वास्तविकता से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है, और तब पता चलता है, निदान होता है सिज़ोफ्रेनिया का।
और ये कब की बात है?
ये 60 के दशक के आखिर और 70 के दशक की शुरुआत की बात है, और ये तो बस पहला झटका था परिवार के लिए।
क्योंकि इसके बाद और भी बेटों को हुआ।
हाँ, इसके बाद तो जैसी ये बीमारी परिवार पे एक तरह से कहर बन के टूट पड़ी। अगले कुछ सालों में एक के बाद एक 5 और बेटों में सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखने लगते हैं।
5 और?
हे भगवान!
हाँ।
और हर किसी में अलग तरह से। किसी को लगता था कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिसे पैरानोया कहते हैं। कोई ऐसी आवाजें सुनता था या चीजें देखता था जो असल में थी ही नहीं।
हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जिसे कहते हैं।
बिल्कुल, कोई एकदम शांत बुद्ध जैसा हो जाता था, कैटाटोनिया। और कुछ बेटे हिंसक भी हो जाते थे। घर का माहौल सोचिए कैसा हो गया होगा।
सोचकर ही डर लगता है। वो घर जो कभी शायद हंसी खुशी से गूंजता होगा, वो अब डर और अनिश्चितता का अड्डा बन गया।
हाँ, और कोलकर उन भयानक स्थितियों का जिक्र करने से हिचकती नहीं है, जब बीमार भाइयों ने अपने स्वस्थ भाई बहनों के साथ, खासकर जो छोटी बहनें थी मार्गरेट और लिंजी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया।
ओह, ये तो बहुत ही दुखद है।
बहुत। पुलिस का घर आना जाना आम हो गया था। बेटों को बार बार मेंटल हॉस्पिटल्स में जबरदस्ती भर्ती कराना पड़ता था।
और उस जमाने में इलाज कैसा था? कुछ फायदा होता था?
इलाज भी देखिए उस जमाने के हिसाब से बहुत क्रूड थे। थॉरजीन जैसी दवाएं थीं, उनकी बहुत भारी डोज दी जाती थी। वो लक्षणों को शायद थोड़ा बहुत काबू करती थी, लेकिन मरीजों को लगभग बेजान जॉम्बी जैसा बना देती थी।
मतलब साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे।
बहुत ज्यादा। ये वो दौर था जब मानसिक बीमारियों की समझ बहुत ही कम थी, और इलाज के तरीके भी बहुत सीमित और अक्सर नुकसानदेह ही होते थे।
इस सबके बीच वो माँ मिमी गैल्विन, उनकी क्या हालत होगी?
सोचिए, एक तरफ बीमार बेटों की देखभाल, घर संभालना, बाकी बच्चों की सुरक्षा की चिंता,
और दूसरी तरफ वो सामाजिक दबाव और शायद खुद का अपराध बोध भी।
बिल्कुल। और उस पर वो जमाने की मेडिकल थ्योरी का बोझ, जो ये कहती थी कि सिज़ोफ्रेनिया के लिए माँ जिम्मेदार होती है, वो सिज़ोफ्रेनिक मदर थ्योरी। कितनी गलत और कितनी क्रूर थी ये।
हाँ, ये तो अन्याय था।
मिमी सालों तक इसी अपराध बोध में जीती रहीं, और पिता डॉन, वो अक्सर या तो अपने काम में डूबे रहते थे, या शायद इस सच्चाई का सामना करने से कतराते थे।
परिवार ने इसे छुपाने की भी कोशिश की होगी।
बहुत कोशिश की। उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे, समाज में इज्जत चली जाएगी, और इस छुपाने की वजह से, इस गोपनीयता ने उन्हें और ज्यादा अकेला कर दिया। घर के अंदर जो चल रहा था वो एक भयानक राज बन गया था।
लेकिन आप कह रही थी कि विज्ञान वाला ट्रैक भी साथ चल रहा था।
हाँ, बिल्कुल। कोलकर ये भी बताते हैं कि कैसे विज्ञान की दुनिया में सिज़ोफ्रेनिया को समझने की कोशिशें चल रही थीं, और कैसे फ्रीडा फ्रॉम रीचमैन जैसे जो मनोविश्लेषक थे, उन्होंने माँ को दोष देने वाली थ्योरी को और बढ़ावा दिया। ये पढ़ना भी तकलीफ देह है कि कैसे विज्ञान के नाम पर इतना बड़ा अन्याय हो रहा था।
पर फिर बदलाव कैसे आया?
धीरे धीरे कुछ रिसर्चर्स ने नोटिस करना शुरू किया कि भाई ये बीमारी तो परिवारों में ज्यादा दिख रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसका मतलब था कि इसमें जरूर कोई बायोलॉजिकल या जेनेटिक कनेक्शन हो सकता है।
अच्छा।
फिर डॉक्टर लिन डिलीसी जैसे वैज्ञानिक सामने आए। वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, NIMH में काम करती थी, और वो सिज़ोफ्रेनिया के जेनेटिक कारणों को खोजने में जुटी थीं। वो पुरानी धारणाओं को चैलेंज कर रही थीं।
तो ये एक तरह से विज्ञान में भी एक लड़ाई चल रही थी, पुरानी सोच और नई खोज के बीच।
बिल्कुल। और फिर 80 और 90 के दशक में कहानी थोड़ा उन बच्चों पर फोकस करती है जो बीमार नहीं पड़े, खासकर दोनों बेटियां मार्गरेट और लिंसे।
हाँ, उनके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। उन पर क्या असर पड़ा है सबका?
उन्होंने बचपन में जो डर, जो हिंसा, जो अराजकता झेली थी, उसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर रहा। गहरे जख्म थे। मार्गरेट जो थीं वो एक तरह से परिवार की इतिहासकार बन गईं, सबकी देखभाल करने वाली, जबकि लिंसे ने कोशिश की कि वो दूर चली जाएं, एक नई पहचान बनाएं, अपने अतीत से, उस ट्रॉमा से भागने की कोशिश की।
उनकी कहानियां दिखाती होंगी कि कैसे घर का माहौल स्वस्थ बच्चों पर भी कितना गहरा असर छोड़ सकता है। वो डर, गुस्सा, प्यार, अपराध बोध सब कैसा उलझ गया होगा।
बहुत ही जटिल जाल था वो। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जहां परिवार और विज्ञान आखिरकार मिलते हैं।
हाँ, वो जेनेटिक रिसर्च वाला पॉइंट।
बिल्कुल। डॉक्टर डेलेसी और उनकी टीम को किसी तरह गैल्विन परिवार के बारे में पता चलता है और उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि ये परिवार सिज़ोफ्रेनिया की जेनेटिक गुत्थी सुलझाने में कितना अहम साबित हो सकता है।
तो क्या परिवार तैयार हो गया रिसर्च के लिए? ये तो बहुत पर्सनल चीजें होंगी।
हाँ, ये आसान नहीं रहा होगा, लेकिन परिवार ने सहमति दी, वैज्ञानिकों ने उनके खून के नमूने लिए, दिमाग और स्वस्थ सभी सदस्यों के डीएनए का अध्ययन किया। ये एक बहुत बड़ा और अभूतपूर्व कदम था उस समय।
और इससे कुछ पता चला? विज्ञान को कुछ मदद मिली?
हाँ, बहुत महत्वपूर्ण मदद मिली। गैल्विन परिवार के जेनेटिक डेटा से विज्ञान को ये समझने में मदद मिली कि शिज़ोफ्रेनिया शायद किसी एक जीन की गड़बड़ी से नहीं होता, बल्कि ये कई सारे जीन्स और शायद माहौल के मिले जुले असर से होता है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी।
और परिवार के लिए इसका क्या मतलब था?
उनके लिए इस रिसर्च का हिस्सा बनना एक तरह से अपने दुख को, अपनी पीड़ा को एक मतलब देना था। उनका जो दशकों का दर्द था, उनकी जो निजी तबाही थी, वो अब विज्ञान की तरक्की में, दूसरों की भलाई में एक योगदान बन रही थी। शायद इससे दूसरे परिवार बच सके, ये सोच उन्हें एक उम्मीद, एक मकसद देती थी। ये वाकई कहानी का एक बहुत ही असाधारण और मार्मिक मोड़ था।
सच में इस पूरी कहानी से कई बहुत गहरे विषय उभर कर सामने आते हैं। पहला तो मेरे लिए यही है कि वो जिसे हम अमेरिकन ड्रीम कहते हैं, वो कितना नाजुक हो सकता है। गैल्विन परिवार बाहर से एकदम आदर्श था, लेकिन अंदर ही अंदर मानसिक बीमारी ने उसे पूरी तरह बिखेर दिया।
हाँ, ये दिखाता है कि ऐसी त्रासदी किसी के भी साथ हो सकती है, चाहे आप बाहर से कितने भी सफल या खुशहाल क्यों न दिखें।
दूसरा बड़ा सवाल वो नेचर वर्सेस नर्चर वाला, मतलब बीमारी की वजह प्रकृति यानी जीन्स, बायोलॉजी है, या परवरिश यानी माहौल।
बिल्कुल। सालों तक मिमी गैल्विन को उनकी परवरिश, नर्चर के लिए दोषी ठहराया गया, लेकिन ये किताब दिखाती है कि कैसे विज्ञान धीरे धीरे प्रकृति यानी जेनेटिक्स की तरफ बढ़ा। सिज़ोफ्रेनिया को एक बायोलॉजिकल, दिमाग की बीमारी के तौर पर देखा जाने लगा।
लेकिन क्या ये पूरी तरह से जेनेटिक ही है? माहौल का कोई रोल नहीं?
नहीं, लेखक ये भी इशारा करते हैं और अब विज्ञान भी ये मानता है कि शायद जीन्स आपको बीमारी के प्रति ज्यादा संवेदनशील, वल्नरेबल बनाते हैं, लेकिन घर का जो तनाव भरा माहौल था, नर्चर, उसने भी शायद बीमारी को उभरने में, ट्रिगर करने में भूमिका निभाई हो। तो ये बहस आज भी पूरी तरह सुलझी नहीं है। शायद दोनों का ही रोल है।
और वो कलंक, स्टिग्मा और छुपाने की प्रवृत्ति, परिवार ने सच छुपाया शर्म और डर के मारे,
और उसका नतीजा क्या हुआ? वो और अकेले पड़ गए और शायद बच्चों का जो दुख था वो और बढ़ गया। ये चीज तो हम भारत में भी बहुत देखते हैं ना।
बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य पर बात करने में आज भी कितनी झिझक है। लोग क्या कहेंगे का डर, मदद लेने से कतराना, ये चुप्पी कितना नुकसान करती है।
सही कहा। और एक और अहम बात जो ये किताब सामने लाती है, वो है देखभाल करने वालों का और जो स्वस्थ भाई बहन थे उनका अनदेखा दर्द, उनका ट्रॉमा।
हाँ, मार्गरेट और लिंसी की कहानियां।
बिल्कुल। उनकी कहानियां बताती हैं कि लगातार डर और जिम्मेदारी के माहौल में पलने का असर जिंदगी भर रह सकता है। मानसिक बीमारी सिर्फ उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती जिसे वो हुई है, वो पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेती है। उनके संघर्ष को भी समझने की, सराहने की जरूरत है।
और इतनी तबाही, इतने दुख के बीच भी आखिर में एक उम्मीद की, एक लचीलेपन की झलक दिखती है।
हाँ, और जीवन में उद्देश्य खोजने की ताकत। गैल्विन परिवार के जो सदस्य बच गए, वो किसी तरह आगे बढ़ने का रास्ता खोजते हैं और विज्ञान की मदद करना, जैसा हमने कहा, उनके दुख को एक मकसद देता है।
ये दिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात से उभरने में भी एक उद्देश्य का होना, एक मीनिंग खोजना कितना जरूरी हो सकता है।
बिल्कुल। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां, कुछ ऐसे विचार हैं जो दिमाग में रह जाते हैं, जैसे ये आइडिया कि मानसिक बीमारी एक पारिवारिक रोग है जो किसी एक व्यक्ति को होता है।
वाह, ये तो बहुत गहरी बात है,
है ना? क्योंकि असर सब पर पड़ता है। 6 बेटे बीमार हुए, लेकिन माँ, पिता, बाकी के 6 भाई बहन, सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।
ये हमें याद दिलाता है कि जब हम किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति की बात करते हैं तो हमें उसके पूरे परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए, उनके सपोर्ट सिस्टम के बारे में।
हाँ, और एक और पंक्ति जो बहुत कुछ कह जाती है वो है, उनकी त्रासदी विज्ञान का अवसर बन गई। ये सुनने में थोड़ा असहज लग सकता है,
हम लगता है,
लेकिन ये उस स्थिति का कड़वा सच था। परिवार का दुख, उनका दर्द वैज्ञानिकों के लिए सिज़ोफ्रेनिया को समझने का एक जरिया बन गया। ये विज्ञान और इंसानियत के बीच के उस मुश्किल जटिल रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है।
और वो सिज़ोफ्रेनिक माँ वाली थ्योरी पर कुलकर की जो टिप्पणी है वो भी बहुत जोरदार है।
हाँ, वो कहते हैं सिज़ोफ्रेनिक माँ के सिद्धांत ने न केवल एक बीमारी का गलत निदान किया, इसने उन्हीं लोगों को दोषी ठहराया जो सबसे ज्यादा पीड़ित थे। इसने दुख के खिलाफ अपराध बोध को हथियार बना दिया।
ये सीधे सीधे दिखाता है कि कैसे गलत वैज्ञानिक धारणाएं असल जिंदगी में कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं।
बिल्कुल। और आखिर में एक जरूरी बात जो किताब याद दिलाती है, मस्तिष्क चिकित्सा में अभी भी सबसे रहस्यमय सीमा बना हुआ है।
मतलब
ये कि इतनी तरक्की के बावजूद हमारा दिमाग कैसे काम करता है और सिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां क्यों और कैसे होती हैं, ये काफी हद तक अभी भी एक पहेली है। हमें अभी बहुत कुछ जानना और समझना बाकी है। विज्ञान अभी भी सीख रहा है।
तो इस किताब से जो हमने सीखा, जो बातें समझी, उन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं, इसका क्या महत्व है आज?
मुझे लगता है सबसे पहले तो ये उन अनगिनत परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति और समझ को बढ़ाती है जो आज भी मानसिक बीमारियों से चुपचाप लड़ रहे हैं। ये उन्हें एक तरह की मान्यता देती है कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी लड़ाई वास्तविक है।
और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं, उनके लिए क्या सबक है?
उनके लिए ये फैमिली सेंटर्ड केयर यानी परिवार केंद्रित देखभाल की अहमियत को रेखांकित करती है कि सिर्फ मरीज का इलाज करना काफी नहीं है, पूरे परिवार को सपोर्ट की, जानकारी की जरूरत होती है।
और भारत जैसे देश में जहाँ परिवार का ढांचा इतना मजबूत है, वहां तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इलाज की प्रक्रिया में परिवार को शामिल किया जाए।
बिल्कुल। और जो रिसर्च करते हैं उनके लिए भी इसमें बहुत बड़े सबक हैं, खासकर जब आप इंसानों पर और ऐसे लोगों पर जो पहले से ही मुश्किल हालात में हैं उन पर रिसर्च कर रहे हो, तो नैतिकता का ध्यान रखना, उनकी सहमति लेना और उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। गैल्विन परिवार का केस इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और सरकार या पॉलिसी बनाने वालों के लिए?
उनके लिए ये कहानी एक तरह की पुकार है कि हमें बेहतर मेंटल हेल्थ सेवाओं की जरूरत है, परिवारों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम्स की जरूरत है और सबसे बढ़कर समाज से इस कलंक को मिटाने के लिए लगातार कोशिशों की जरूरत है, ताकि कोई और परिवार इस तरह अकेले ना पड़ जाए, उन्हें छुपना ना पड़े।
और हम जैसे आम लोगों के लिए ये किताब क्या करती है?
मुझे लगता है हम जैसे आम लोगों के लिए ये किताब मानसिक बीमारी को लेकर जो आम गलतफहमियां हैं, जो डर हैं, उन्हें चुनौती देती है। ये हमारी सहानुभूति बढ़ाती है। हम समझने लगते हैं कि ये किसी की इच्छा शक्ति की कमी या चरित्र की कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत ही मुश्किल बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्थिति है जिसके लिए मदद और सहारे की जरूरत है।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस किताब से सबसे बड़ी बात क्या सीखी आपने, सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा है?
मेरे लिए ये सिज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी की जो भयानक, दिल दहला देने वाली सच्चाई है, उसको बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है, लेकिन साथ ही उसी अंधेरे में इंसानी हौसले की, टिके रहने की जो अविश्वसनीय ताकत है, उसे भी दिखाती है। और ये बिल्कुल साफ कर देती है कि सिज़ोफ्रेनिया दिमाग की बीमारी है, किसी की परवरिश या चरित्र की कमी नहीं।
और मेरे लिए शायद सबसे यादगार बात ये रही कि कैसे एक परिवार का जो निजी नरक था वो विज्ञान के लिए एक सार्वजनिक उपहार बन गया। ये सुनने में अजीब लगता है, विरोधाभासी लगता है, पर यह हुआ। और ये इस बात पर जोर देता है कि हमें विज्ञान की तरक्की भी चाहिए और इंसानी हमदर्दी करुणा भी चाहिए। कोई एक अकेला काफी नहीं है, दोनों साथ साथ चलने चाहिए।
बिल्कुल सही कहा। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जो परिवार गंभीर मानसिक बीमारी से प्रभावित है, उन्हें हमारे जजमेंट की नहीं, हमारी समझ और सहारे की जरूरत है। और साथ ही हमें उन वैज्ञानिक खोजों को भी स्वीकार करना होगा, उनकी सराहना करनी होगी, जो शायद ऐसी ही मुश्किल और दुखद परिस्थितियों के अध्ययन से संभव हो पाती हैं।
शायद अंत में सोचने वाली बात यही है ना, कि हम एक समाज के तौर पर विज्ञान की उस निरंतर खोज और उन लोगों की मानवीय गरिमा और देखभाल जो इन बीमारियों से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं, उनके बीच एक बेहतर संतुलन, एक बेहतर तालमेल कैसे बिठा सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा और सोचने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।